आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त सावन कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का अध्याय चतुर्थ। कल हमने पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे होते हैं। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, मैं आपको किताब पर सीधे लिए चलता हूँ। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को भी बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होती? अब आपके कक्षा के कोई मॉनिटर हैं, अब मान लीजिए मॉनिटर साहब हैं, क्यों कहें सर मैं तो क्लास में शांति बना के रखूँगा और सारी बातों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं रहेगी, जैसे कि कौन झाड़ू लगाएगा, कौन क्लास में कचरा साफ करेगा, कौन क्लास के खेल का कप्तान होगा, खेल की चीज़ें देखेगा, तो मैं इतना अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ विद्यार्थी चाहिए। तो आपके दे देंगे, देखिए खेल विभाग ये देखेगा क्योंकि अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये झाड़ू लगाएगा, एक तरह से बांट दिया जाएगा। तो जो काम बांटेंगे तो वो काम तो आपके हो गए प्रधानमंत्री मॉनिटर साहब, क्योंकि आप राष्ट्र शिक्षक को तो जवाब वही देंगे ना, तो शिक्षक आपके राष्ट्रपति हो गए, मॉनिटर आपके प्रधानमंत्री हो गए और जो जो बच्चे उनकी सहायता देंगे वो मंत्री हो गए। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रियों को काम बांट देता है, लेकिन देखिए इस तरह मॉनिटर भी बांटेगा। अब कोई काम नहीं करेंगे तो उन्हें हटाने का भी अधिकार रखता है, तो वो भी बात होती है। कभी विवाद हो जाए तो ठीक है, मॉनिटर ही निर्णय लेता है, आखिरी तो उसका निर्णय माना जाता है, तो उसमें प्रधानमंत्री का निर्णय माना जाता है। और अगर मॉनिटर ही हट गया तो फिर जो जो है वो हट जाएंगे, क्योंकि भाई अब अगले मॉनिटर आएंगे तो किसे किसे रखेंगे वो तो उनकी इच्छा पे है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। देखिए कई अब ऐसा होता है कि अब बीजेपी के हैं प्रधानमंत्री तो जहां बीजेपी की रैली हो रही है वहां जा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जा तो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन पर जो खर्च हो रहा है वो तो सरकारी हो रहा है और आप किसी पार्टी का चुनाव का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो बहुत से देशों में जहाँ पे संसदीय लोकतंत्र, देखिए संसदीय लोकतंत्र हुआ कि जहाँ संसद के माध्यम से लोकतंत्र चलता है, अब मॉनिटर मान लें कि ठीक आपका है, मॉनिटर कहीं जाए कुछ और भी आपके स्कूल का प्रचार करने के लिए ये कर, या कुछ और अपने काम से जाए निजी काम से, और जो फंड आपने जमा किया है स्कूल में या फिर जिस बातचीत के लिए आपने कुछ चिल्ली चंदा किया उसको अपने ऊपर खर्च कर दे तो कैसी नाइंसाफी है। या फिर वो अपनी पार्टी बनाए, पार्टी वर्कर्स की मदद से देश चलाने लगे या फिर उस नियंत्रित करने लगे, तो ये भी बिल्कुल गलत बात होगी, ये तो लोकतांत्रिक हो जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ एक और बात कही जा रही है कि इतना पर भी तो चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्तित्व तो होता है, व्यक्तित्व तो मतलब पर्सनालिटी। अब मान लीजिए आपके जो मॉनिटर हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी ठीक हैं, सबको लेके चलते हैं, तो फिर आपको भी रहेगा कि हाँ ठीक है मॉनिटर साहब हैं, चलो इनका साथ निभाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, है ना, तो उनके विरुद्ध आवाज़ उठती है। तो प्रधानमंत्री का अधिकार व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। व्यक्तित्व सटीक हो तो अधिकार ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। देखिए, अब एक प्रवृत्ति उभरी है गठबंधन सरकार की। गठबंधन क्या हुई, मान लीजिए 545 लोग हैं चाहिए आपको लोकसभा में, आपके आए 260, 12 आपको और चाहिए, 13 चाहिए बहुमत के लिए, क्योंकि 273 में होगा। तो आपने दूसरे पार्टियों से कहा कि भाई आपके पास 15 सीटें हैं, तो ऐसा करो कि आप आ जाओ। तो दोनों ने मिलकर बनाया, यही गठबंधन सरकार होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आए हैं उनका भी कुछ है, तो आपको उनकी बातें भी माननी होंगी, अन्यथा वो अपना समर्थन ले लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। तो अभी अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस मामले में थोड़े बहुत अधिकार सीमित हुए, क्योंकि आप मनमानी नहीं कर सकते, है ना। राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर मुन्नी आपसे एक प्रश्न पूछ रही है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग का इस्तेमाल क्यों होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, अब राष्ट्रपति मान लें कि अगर इससे कोई इंदिरा गांधी बन गई, प्रतिभा पाटिल बन गई, तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिभा पाटिल ने कहा या प्रतिभा पाटिल ने यह बात कहा, मतलब हम किस तरह का प्रयोग करेंगे। तो ये तो प्यारे बच्चों आप पे निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल क्यों होते हैं। देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं वो पद के आधार पर नहीं होते हैं, शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उनका लिंग निर्णय भी थोड़े अलग ढंग से होता है। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम पुल्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पद है ना, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। राष्ट्रपति, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी, मतलब राष्ट्र का वो मेन होते हैं। अब जब राष्ट्र के वो मेन होते हैं, फिर क्या करेंगे, अब राष्ट्र के मेन है तो वो देख रेख करेंगे, जैसे आपके वर्ग शिक्षक होते हैं, कहने के तो वो कक्षा प्रमुख है, लेकिन उनका सारा जिम्मेदारी कौन संभालता है, तो मॉनिटर संभालता है, वो बोलता है सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सारा करता है ना, यही काम राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। देखिए, राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या है, हम सीधे सीधे वोट तो दिया नहीं, तो जनता ने जिन्हें चुना था आपको उसने चुना, यानी कि जनता का पूरा समर्थन आपको प्राप्त नहीं है, क्योंकि जिन्हें जनता ने चुना उसमें भी से कई थे जो उन्हें वोट नहीं दे रहे थे, है ना। तो आपको तो उसने नहीं चुना, लेकिन प्रधानमंत्री को, उसको तो जनता ने सीधे चुना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, बहुत बड़े स्तर पर वोट पड़े हैं। और आपने पढ़ा है ना कि लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, और इसी पर अधिकार भी तय करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए प्रधानमंत्री के अधिकार ज़्यादा हैं, और राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, कहने को हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं, सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। अब देखिए, कितने सबको नियुक्त आप ही करेंगे, इतने बड़े देश का सिस कमांडर आप हैं, कितने सारे अधिकार आपको दिखाई देंगे संविधान में अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो, है ना। तो आपको लगेगा कि अरे राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुन्नू आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि इस सवाल से तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, जब कोई महिला राष्ट्रपति बने गई तो क्या उसे राष्ट्रपति कहना ठीक होगा, क्या हमारी भाषा मर्दों ने बनाई है। अब देखिए, कोई महिला बन जाए तो क्या हम उसे राष्ट्रपति कहेंगे, ऊपर का सवाल का जवाब है ना मुन्नू का। तो मैंने कहा ना कि हम पद के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। खैर, यहाँ पे मुन्नी एक और सवाल पूछ रही है कि लोकतंत्र के लिए कैसा प्रधानमंत्री होता है, ऐसा जो केवल अपनी मर्जी से काम करता है, या ऐसा जो दूसरे पार्टियों और व्यक्तियों से भी सलाह लेता है। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री होता है, ये तो अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर पाएंगे आप, है ना। आपको सलाह तो लेनी होगी, क्योंकि आदर्श लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा कि जितने ज़्यादा लोग विचार विमर्श करेंगे, मिलकर करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा, है ना। उतनी ज़्यादा चीज़ें साफ रूप से, स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएंगी, है ना। ये बातें आपने आपको थोड़ी रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र का होगा जो सबसे मिलकर फैसला करेगा। आइए, मैं फिर से आपको राष्ट्रपति के लिए चलता हूँ। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है। देखिए, अभी एक तरफ तो आपने देख लिया कि बाप रे बाप राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार हैं। अब यहाँ बता रहा है कि राष्ट्रपति तो कुछ नहीं करता है, जो मंत्रिपरिषद कहेगी आपको वही करना होगा। मतलब आपके वर्ग शिक्षक जो हैं, दिखने में तो अधिकार खूब हैं, तो वो क्लास में आते हैं, क्लास का मॉनिटरिंग करते हैं, रजिस्टर भी वही मेंटेन करते हैं, आपको कुछ प्रधानाचार्य से चाहिए तो उन्हीं के नाम पर मिलेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ वो मॉनिटर से पूछते हैं कि क्या डस्टर चाहिए, क्या चौक चाहिए, क्या ये चाहिए। तो आपके मॉनिटर यहाँ सब कुछ दिख रहे हैं आपको, लिखा तो सब कुछ प्रधान, पूरी दुनिया जान रही है, बाहर के लोग जान रहे हैं, वर शिक्षक हैं, लेकिन व्यवहार में आप क्या देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये आपके मॉनिटर हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तब फिर आपके वर शिक्षक करते क्या हैं, राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके क्लास में एक मॉनिटर साहब हैं, सब चाहते हैं कि ये मॉनिटर बने, तब तो कोई बात ही नहीं है, वर शिक्षक को दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर 5-6 उम्मीदवार खड़े हैं और सबके तरफ जा रहे हैं और किसी को भी पूरा आधा कक्षा का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो शिक्षक पर भी निर्भर करता है कि वो देखे कि कौन सा विद्यार्थी इसे संभाल सकता है और उसे वो मॉनिटर बना देगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में कुछ बताया जा रहा है। आइए, दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करता है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस से बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कही जाती है। आपने देखा अमेरिका में कैसा है कि राष्ट्रपति को फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोकसभा में बहुमत है या राज्यसभा में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर वो टिके भी नहीं रहते हैं। उसके बाद संसद अगर कोई कानून पारित कर देती है और तो वो चाहें तो वीटो का अधिकार दे रोक सकते हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर है, तो हम उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। भारत में संसद को ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है, तो हम इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। समझ गए बच्चों आप, है ना। आइए देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को लूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। इलियम्मा, अन्ना कुट्टी और मेरी मॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती हैं। वे तीनों एक एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्या आप उन्हें उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं? मुझे तो लगता है बच्चों आप दे सकते हैं। आइए, इलियम्मा, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा हो तो दोनों मिलजुल कर बातें करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री थोड़ा प्रभावी तो होंगे, क्योंकि एक बार भेजेंगे, राष्ट्रपति मना कर देंगे, फिर भेजेंगे, इस बार तो मानना ही पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री के प्रभाव विचार जो है वो हमेशा प्रभावी होंगे। अन्ना कुट्टी, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो, वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? देखिए, बड़ा अच्छा करे अन्ना कुट्टी भाई, वो देखो बंदूक नहीं चला सकता, आप कमांडर बना रहे हैं, सेनापति लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, और पता चला कि सेनापति हैं उनको तो लड़ना भी नहीं आता है, कप्तान है, खेलने ही नहीं जानते कप्तान है। लेकिन देखिए कुछ ये ना सिर्फ सांकेतिक पद है ना, एक सांकेतिक पद है कि चूंकि देखिए सेना किसके लिए, जनता के लिए, तो उसे किसके अधीन किया जाए? अब प्रधानमंत्री के अधीन रहेंगे तो प्रधानमंत्री तो देखिए सत्ता पार्टी इन सबों में है, तो वो उसका प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अधीन वो रहेंगे तो राष्ट्रपति तो शासन से ऊपर होता है ना, सत्ता पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए उन्हें उनका कमांडर बना दिया जाता है, ताकि वो जनता के अंदर भी रहें और उस तरह से उनका फायदा भी ना उठाया जा सके। मैरी मॉल, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? देखिए, हमारे घर में होते हैं ना दादाजी दादी होती हैं, अगर पिताजी कमा रहे तो क्या दादाजी की जरूरत नहीं होती? होती है ना, कि कुछ मामलों में सलाह लेने के लिए, अगर कोई बड़े बुजुर्ग आ गए हैं या फिर कुछ बहुत उस तरह की समस्या आ गई है तो वो कुछ सलाह भी दे सकते हैं और अपने कुछ अधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके लिए राष्ट्रपति होना चाहिए। और उसके बाद ये भी बातें होती हैं कि प्रधानमंत्री तो चलिए पार्टी वाइज का होता है, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी हैं, राजनीति हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते, तो एक तो होना चाहिए ना जो इनसे ऊपर रहे और उनको बढ़िया से देखभाल करे, पूरे देश को सुपरवाइज करे। आइए, मैं आपको न्यायपालिका पे लेके चलता हूँ। अब मुझे लगता है कि न्यायपालिका के बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे, अक्सर अखबारों में रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी, तो आप इसके बारे में तो जरूर परिचित होंगे। आइए, न्यायपालिका, इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं करता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। देखिए, वहाँ पे जो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सरकार को कुछ संशोधन करना चाहिए और ये होगा। कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। अब सोचिए कि अगर प्रधानाचार्य की बात शिक्षक ना माने, आपने शिक्षक के खिलाफ कंप्लेंट की तो प्रधानाचार्य ने फाड़ के फेंक दिया, या उन्होंने आदेश दिया शिक्षक को तो शिक्षक भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे हैं। अगर आपके पक्ष में आ गए तो शिक्षक नहीं माने, शिक्षक के पक्ष में तो आप नहीं माने, फिर क्या होगा? ऐसे में तो अव्यवस्था फैलेगी, क्योंकि सरकार को तो जनता पे भरोसा नहीं रहेगा, जनता भी सरकार के विरोध में आएगी, तो फिर देश में क्या होगा? हम दूसरे सिर्फ प्रदर्शन करेंगे ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से खुद करो खुद सीखें। आप देख रहे हैं इसको, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी बड़े फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करें। मूल फैसला क्या था, क्या अदालत ने उसमें बदलाव कर दिया, इसका कारण क्या दिया गया? अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में YouTube पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। सबरीमाला विवाद हो जाए, निजता का अधिकार हो जाए, इसमें मामले में आपको सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से बहसें देखने को मिलेंगी और बहुत से इस पर अच्छे अच्छे राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी के वीडियोज भी हैं। तो बच्चों, आप स्मार्टफोन का प्रयोग स्मार्ट तरीके से करके स्मार्ट बच्चे बन सकते हैं, है ना मज़ेदार? आइए, मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है, वह इनमें से किसी भी विवाद को सुन सकता है। आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका कैसे है, तो एक प्रिज्म पिरामिड की भांति है ना। पिरामिड क्या होता है, तो नीचे उसका त्रिभुजाकार होता है, नीचे चौड़ा होता है, स्थानीय अदालत हैं, जिला अदालत हैं, बहुत सारे हैं, जितने जिले हैं उतने अदालत हैं। फिर थोड़ा सा आप में आ जाता है हाई कोर्ट, हर राज्य में एक एक लगभग लगभग होता ही, जैसे बिहार में पटना है, राजस्थान में जयपुर हाई कोर्ट है, फिर थोड़ा सा ऊपर होता है और ये एकदम एपेक्स बिंदु है सबसे, एक पॉइंट ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये इन सबका हेड होता है, सबका हेड होता है। जैसे प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य के भी ऊपर होंगे जिन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो प्रधानाचार्य मान लीजिए आपके जितने एरिया में जिले में स्कूल हैं उन सबों के होंगे, तो इन्हें किन्हें जवाब देना होगा, अपने अपने डीओ को, तो डीओ को हाई कोर्ट मान लीजिए आप, जो जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, और वो सब किसे जवाब देते हैं, तो जो ऊपर में जिला शिक्षा पदाधिकारी बैठे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट मान लें आप, है ना, मज़ेदार। तो अब देखिए एकीकृत का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी आदेश दे सकता है, कोई भी फैसला वो किसी उसका फैसले जो भी होंगे सबको मानना पड़ेगा। ओके, किसको सुन सकता है, आइए देखते हैं। देश में नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय सुन सकता है कि आपको किसी से झगड़ा है वो भी केंद्र राज्य में हो जाए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, ममता दीदी उधर से कह रही कि नहीं आने देंगे, तो इस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। प्रिय बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने गांव में किसी भी बुजुर्ग से पूछें कि फौजदारी और दीवानी क्या मामला होता है, है ना, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, तो इस इन दोनों मामलों में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, इस वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशविरे से नियुक्त करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका को दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। देख रहे हैं कि भारत में कहा राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब कार्यपालिका और विधायिका उन्हें निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उनके मुताबिक फैसले होंगे ना, फिर निष्पक्ष न्याय रहेगा कहाँ। न्याय निष्पक्ष हो, अगर न्याय हो तो निष्पक्ष हो, है ना, कि आपने सुना, एक शायद आपने कविता भी पढ़ी होगी रश्मि रथी की, अगर चाहते न्याय तो आधा दो, अगर न्याय चाहते हो तो न्याय मतलब निष्पक्ष, न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए। तो निष्पक्ष कैसे होगी, कार्यपालिका विधायिका किसी का दबाव नहीं, किसी का फोन नहीं आएगा, कोई उन्हें संपर्क नहीं करेंगे, किसी तरह का दबाव नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और भी है कि ठीक है दबाव नहीं है, लेकिन अगर हम आपको नियुक्त करते हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते लेकिन हम ही आपको नियुक्त करते हैं, तो आपको दबाव बना रहेगा, बाप रे बाप उन्होंने नियुक्त किया है, हटा भी सकते हैं। तो एक बार अगर आप बन गए तो हटाना संभव है। कैसे हटाएंगे आप, दोनों सदनों में चले जाइए, मान लीजिए दोनों सदनों में 300 लोग हैं, अब 300 में 200 बोलेंगे कि हटाइए, तब हटाएंगे आप, वैसे आप नहीं हटा सकते। अब नियुक्त भी कैसे करेंगे, तो ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति बोल दिए तो हो गया, राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्ति को शपथ दिलवाएंगे, बाकी उनके कौन कौन नियुक्त होगा इसके लिए क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, न्यायाधीश भी कौन, जो सबसे वरिष्ठ हैं, मतलब अब वो रिटायर होने पर है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो उनकी टीम आएगी, अकेले वो भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, और सब मिलजुल कर फैसला करेंगे, एक दूसरे से सलाह लेंगे, फिर जाके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करेंगे। इस प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। देखिए थोड़ा सा भी बात तो इस प्रणाली पर भी होता है, ऐसा नहीं होता कि न्यायपालिका अब सवाल नहीं उठते हैं, कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका अपने फैसलों के कारण फंसती है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा जल्दी होता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में अभी तक जो महाभियोग है ऐसे तो एक दो पे लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक सफल किसी पर भी नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका कितनी जबरदस्त रूप से निष्पक्ष है। आप ऊपर के कार्टून में देखिए कितना जबरदस्त कार्टून है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है, यह काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है? हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते? क्या हमारी न्यायपालिका के स्वतंत्रता को दर्शाता है? देखिए पहले कार्टून क्या कहता है। इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा है, आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की, कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है, वह बिना हिचकिचाए ऐसी बातें कह सके। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें राष्ट्रपति सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन ना करे। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर, मतलब कितना जबरदस्त साहस से ये लिखा गया है कि सिर्फ राष्ट्रपति के हाँ में हाँ मिला ये न्यायाधीश बन जाएंगे आप अमेरिका के, बस इतना ही आना चाहिए कि आप जब भी उनको मिले उनकी तारीफें करें, बोले आपसे बेहतर मैंने नहीं देखा और आप राष्ट्रपति बन न्यायाधीश बन गए। भारत में ऐसी ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि भारत में आप देख रहे हैं ना कितनी ज़बरदस्त प्रक्रिया है और बहुत ज़बरदस्त रूप से न्यायपालिका के फैसले भी आए हुए हैं। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका को कार्रवाई की चुनौती मिलती है तो वे उसके संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। देखिए प्यारे बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि भारत की न्यायपालिका क्या है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर न्यायपालिका है, सबसे ज़्यादा, और इतना ताकतवर है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है आप क्या समझो उससे मतलब नहीं है, जो कोर्ट समझाएगा वही सही है। आप अपने मन से कुछ भी समझ लीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर कभी कोर्ट को ऐसा लगा कि आपने ये जो नियम बनाया है ये सही नहीं है तो उस नियम की वो जांच करेगा। जैसे आपको ये याद है उसमें कोर्ट में उस नियम की जांच की थी, तो उसे वो हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। देखिए हाल के दिनों में एक जनहित याचिका जैसी भी आपको शब्द पढ़ने को मिल जाएंगे। तो जनहित याचिका क्या होती है, मान लीजिए कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं। अब पेड़ तो अपना आवेदन नहीं देगा ना कि मुझे बचाइए और मुझे कटने से बचाइए, वो तो जानता भी नहीं है, तो उसके बिहाव पर आप दे सकते हैं। या समाज का कोई ऐसा वर्ग है जैसे दलित है महादलित है, उन्हें कुछ उनका अधिकारों का हनन हो रहा है और वो नहीं कोर्ट जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर उनकी जगह पे आवेदन दे सकते हैं। ये जनहित याचिका होती है ना। इसके अलावा और कभी कभी तो यहाँ भारतीय न्यायपालिका तो इतनी ज़बरदस्त है कि वो अखबार की कटिंग को, है ना, अखबार में अगर खबर छपी है उसके आधार पर भी फैसला देती है, उसके आधार पर भी जनहित याचिका शुरू करती है, इतनी ज़बरदस्त है। और इस जो फैसला क्या दिया, एक बार दिया था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं संसद नहीं बदल सकती। मूलभूत सिद्धांत जैसे हमारे कुछ अधिकार हो गए, फिर जैसे कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो इस तरह के जो है प्रस्तावना में जो लिखे हुए हैं आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं, जो सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। आप देख रहे हैं न्यायपालिका के रूप में भारत, न्यायपालिका को भारत में काफ़ी विश्वास है कि नहीं, न्याय कोर्ट है ना, हम सब कहते हैं चलो भाई कोर्ट है, कोर्ट में फैसला आने दो, कोर्ट पर भरोसा करो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार बच सकें, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, तो एक तरह से उनका संरक्षक भी ये होता है। एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाएं कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र है, बिल्कुल, देखिए 5-6 मिलके करते हैं, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, विधायिका भी रहती है, कार्यपालिका भी रहती है, न्यायपालिका भी रहती है, तो तीनों मिलके करते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लगभग लगभग असंभव है, तो स्वतंत्र है। न्यायपालिका के अधिकार तो आप जानते ही हैं कितने ज़्यादा अधिकार हैं कि वो सरकार को फटकार लगा सकती है, बिल्कुल यहाँ तक कि हमारे संविधान की व्याख्या कर सकती है, तो पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। आप नीचे में एक तस्वीर भी देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय है राष्ट्रपति महामहिम श्री राम कोविंद, वो श्री जस्टिस एस खेहर जो कि हमारे सीजे आए थे उस वक्त, उन्हें शपथ दिला रहे हैं। तो इस तरह से ये हुआ। आइए कुछ शब्दों को मैं देख लूँ कि शब्द जो हैं इनकी व्याख्या। गठबंधन सरकार, मैंने आपको इस तरह से बताया कि अब एक को बहुमत नहीं मिला तो दो मिलकर बना लेते हैं, तो वो गठबंधन होते हैं। कार्यपालिका, आप जानते हैं कि संविधान और कानून जो है उसमें जो लिखा गया है, जो उसको लागू कर दे, जो नियम कानून को लागू कर दे। सरकार, आप जानते हैं सरकार किसे कहते हैं कि संस्था का ऐसा समूह, संस्था मतलब कौन, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गया, तो ऐसा समूह जो देश में जनजीवन को सुरक्षित करे, सुव्यवस्थित करे, बढ़िया से चलाए, वो सरकार होती है। न्यायपालिका कैसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करती है, जो है ना, वो न्याय करना, विवाद का निपटारा करना, ये सब काम करती है। विधायिका, आप जानते हैं जिसे कानून बनाने का अधिकार हो, वैसी संस्थाएं। कार्यालय, ज्ञापन की सरकार जो फैसला लेती है उसको अपने सरकार ऑफिस के माध्यम से डाल देती है। राजनीतिक संस्थाएं, आप जानते हैं राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं, तो देश का समूह है, जीव राजनीति को जो राजनीति करती है या राजनीति से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। आरक्षण की, अगर मान लीजिए कोई पिछड़ा हुआ है तो आप उसे कुछ छूट देते हैं। और राज्य, आप जानते हैं राज्य क्या होते हैं, तो निश्चित भूभाग्य हो गया, शब्द हो गया, बहुत एक मतलब एरिया जिसमें कुछ लोग रहते हैं, वहाँ की एक खास ढांचा होता है, तो उसे हम राज्य कहते हैं। प्रिय बच्चों, आज हमने पढ़ाई की कि न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार होते हैं, न्यायपालिका क्या कर सकती है। आपने ये भी देखा कि न्यायिक समीक्षा कर सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। फिर आप ये भी उसमें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत में जो है बहुत प्रभावशाली है, इनके जजों की नियुक्ति बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से होती है, हटाना लगभग लगभग नामुमकिन होता है। फिर हमने आज यह भी जाना कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं। आप ये जान चुके हैं कि राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम के होते हैं, जो करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे, तो प्रधानमंत्री को हम वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कहते हैं, राष्ट्रपति नाम के होते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या होती है, जिसमें राष्ट्रपति सब कुछ करते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, तो इस तरह से आज हमने इसका अध्ययन किया। प्रिय बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जो है ज़रूर अब कहाँ पहुँचे, क्या समझे, इसके अतिरिक्त तो जो खुद करें, खुद जाने जैसे प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और उनमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय ले रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे, और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा होगा, मनोरंजन भी मिल रहा होगा और ज्ञान भी बढ़ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप सीख रहे होंगे। आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है, महान पेंटर, सिर्फ पेंटर ही नहीं बल्कि इधर से कहिए कि वैज्ञानिक भी थे, घुड़सवार, पहलवान, बहुत ज़्यादा बहुत सी विद्याओं के धनी। उन्होंने कहा था कि लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट माइंड, सीखना कभी भी दिमाग को थकाता नहीं है, उबाता नहीं है। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर जिस तरह से सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सीखने सिखाने का जो क्रम है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप अपने पढ़ाई को पूरे मज़े के साथ पूरे कर रहे होंगे, लगातार सीख रहे होंगे, आप भविष्य में आगे बढ़ें, आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपका दोस्त सावन आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, सी यू वंस अगेन।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।